शांति। जिस दिन का काफी लंबे समय से आप सभी को इंतजार था, वो दिन, वो शुभ घड़ी, वो सुअवसर आज आ चुका है। आखिर वह दिन आया आज। जैसे आप सभी को पता चला होगा कि हमें पांडव भवन में तपस्या के लिए जाना है, तब से अंदर से दिल की भावना, दिल की तरंगे और दिल की आवाज आती रही होंगी कि हम वो भूमि पर जा रहे हैं जहां बाप दादा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि और वरदान भूमि है। तो मैं तो ये कहूंगी और आप सभी यही समझते होंगे, यह आप सभी के लिए एक डायमंड चांस कहो या तो गोल्डन चांस कहो, आप सभी को मिला है। आप वो भाग्यवान आत्माएं हो। तो आप सभी का इस बेहद बाप दादा के घर में, बाप दादा की तरफ से, सर्व दादियों के तरफ से, शशि दीदी और सीलू दीदी के तरफ से और हमारे सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों के तरफ से दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी इस चार दिन में, इस भट्टी में हमें क्या करना है, इस शुभ घड़ियों को कैसे हमें सफल करना है, तो हम अपने ध्येय और लक्ष्य को ऊंचा बनाने के लिए आज किस विधि से हमें ये चार दिन अपने बिताने हैं, तो वो स्पष्ट करने के लिए आए हैं हमारे बीच में। आज हम सभी के बीच में वो बहुमूल्य रत्न विराजमान है, आदरणीय गीता दीदी जी। तो हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करते, अभिवादन करते, अभिनंदन करते। बाबा के यज्ञ का आप वो विशेष रत्न है जो आपने बचपन से ही बाबा को पहचाना, और सिर्फ पहचाना नहीं लेकिन छोटी उम्र में ही आपने आपका जीवन बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। मुझे यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं लगती है कि दीदी जी आपके जीवा पर साक्षात सरस्वती विराजमान है। आप वो विद्वान ज्ञान स्वरूप आत्मा हो और आप वो दिव्य गुणधारी, दिव्य जीवनधारी आत्मा हो कि आप जो कहते हो वो आपके जीवन में प्रैक्टिकल चरितार्थ हम सभी महसूस करते हैं। तो ऐसी आत्मा, उसका एक जीवन का प्रसंग मैं सुनाने के लिए अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ। जब आप अपनी लाइफ के अंदर जब पढ़ाई पढ़ते थे, ओल्ड एसएससी में रिजल्ट आया, आप बोर्ड फर्स्ट, गुजरात बोर्ड फर्स्ट आए और गोल्ड मेडलिस्ट हुए, लेकिन तुरंत आपने आपका जीवन बाबा की जीवन, बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। तो ऐसी निश्चय बुद्धि समर्पित आप विशेष आत्मा हो। मधुबन हेडक्वार्टर के बिजनेस विंग के आप कोऑर्डिनेटर भी हो और साथ साथ देश विदेश में आप बच्चियां कराने के लिए भी जाते रहते हो और मधुबन और चारों ही तरफ बाबा के बेहद घर में जो भी प्रोग्राम बनते हैं, कॉन्फ्रेंस, शिविर, बच्चियां, उसमें आपका पार्ट तो विशेष रहता ही है, लेकिन एक विशेष पार्ट आपका बहुरत्न पार्ट मैं कहूंगी, वो है जब कन्याएं अपने जीवन को समर्पित करने के लिए जब तैयार होती है तो कन्याओं का एक मास के लिए बाबा के बेहद घर में उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रखी जाती है, तो उसमें भी आपका बहुमूल्य पार्ट है। तो ऐसी हमारी दीदी जी आज आपका विषय लेंगे, आत्मशुद्धि का एकमात्र उपाय। आत्मशुद्धि का एकमात्र उपाय गहन तपस्या एवं भट्टी का लक्ष्य। तो हम सभी बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि में आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। हम लोग कहते हैं कि मधुबन परम पिता का घर है। यहाँ परिवार की भावना आती है, परिवार का प्यार मिलता है। ज्ञान सरोवर को परम शिक्षक की यूनिवर्सिटी कहते हैं, जहां ज्ञान का विस्तार प्राप्त होता है। बाबा के ज्ञान को प्रोफेशन वाइज समझाना, टीचिंग मेथड से, वो सिस्टम ज्ञान सरोवर से ही शुरू हुआ और शांतिवन परम सतगुरु का दरबार है ना, जहां सत्संग चलता ही रहता है। एक भाई ने और मंथन करके बताया कि पीस पार्क जो है वो खुदा दोस्त का प्लेग्राउंड है। वहां बाबा के संग खेलना है, पिकनिक करनी है। और वो कहता है कि हॉस्पिटल जो है वो धर्म हिसाब किताब चुकाना है वो। तो बाबा के बेहद घर में सभी स्थान है। आपको मौका मिला है बाबा के प्यार भरे घर में रहने का, जहां के कण कण में बाबा के चरित्र समाये हुए हैं। कोई भी धार्मिक ऐतिहासिक स्थान पर जाते हैं, कोई संस्था में जाते हैं, तो इंटरेस्ट रहता है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। बाबा के बच्चों को भी जरूरी ये रहता है कि कैसे बाबा का कार्य शुरू हुआ। अब वो सिंध हैदराबाद तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन भारत में जहां प्रारंभ हुआ उस मधुबन भूमि में आने का तो बहुत मन करता है। और भक्ति में भी जैसे कोई संप्रदाय या उनके स्थापक की, गुरु की समाधि पर लोग जाते रहते हैं, ये तो सच में ड्रामा की नंबर वन आत्मा, ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने इस कल्प में का यादगार है ना, चार धाम हम कहते हैं। अभी तो सिर्फ भाई बहनों को विजिट करने का ही मौका मिलता है, पर पिछले 2-3 साल से ड्रामा अनुसार ही ये सौभाग्य बना कि प्रतिवर्ष 20 ग्रुप यहाँ आते हैं अप्रैल से सितंबर तक। 200-200 भाई बहनों के 20 ग्रुप दिए जाते हैं जो आकर के अपनी तपस्या करते हैं, और बाकी अक्टूबर से मार्च तक फॉरेन के भी के भाई बहने रहे। तो ये भूमि टोटल योगियों की भूमि, तपस्या की भूमि बन गई। शांतिवन में 9 मास बीके भाई बहने, 3 मास मेहमान। ज्ञान सरोवर में 6 मास मेहमान, 6 मास विदेश के बीके भाई बहन। तो प्रैक्टिकली भी ये कैंपस पवित्र योगी तपस्वियों का बना हुआ है। जूनागढ़ सब जोन के भाई बहने हाथ ऊपर करें। ये हरियाणा, टोटल हरियाणा के भाई बहन है। अच्छा, तभी अनीता दिखाई दी, मैंने कहा पता नहीं अनीता। टोटल हिसार, बहुत अच्छा, हिसार की बहुत महिमा सुनी। हम खुद भी आए हैं, और अभी हम सहारनपुर में थे अप्रैल 1st वीक में। अमीर चंद भाई बहुत महिमा कर रहे, कितना अच्छा ईश्वरीय परिवार है हिसार का, कि कितना बड़ा हॉल बनाया वो भी छोटा पड़ रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। जरूर हर एक भाई बहने आप समान बनाते होंगे, किस किस ने आप समान बनाए हैं हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा, आपके पीछे बाबा के नए नए बच्चे भी आते हैं। तो हम सबका कार्य है कि हम और आगे बढ़े, तो पीछे आने वाले बाबा के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने बताया था कि बाप गुप्त हुआ, बच्चों को विश्व के आगे स्टेज पर लाने के लिए। जब तक माता पिता होते हैं, बच्चे तो उनके आगे छोटे ही होते हैं, चाहे कितने भी बड़े बन जाए। तो बाबा अव्यक्त हुए सितारों को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि हम भी आगे बढ़ेंगे, अव्यक्त होंगे, तब तो पीछे वाली आत्माएं भी आगे बढ़ेगी। आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है कि व्यक्तिगत रूप से बहुत कम लोग आने की हिम्मत करते, हर एक एक दो के द्वारा ही आते हैं। तो हम जितना ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, हमें देखकर हमारे छोटे भाई बहने भी उन्नति करेंगे। दुनिया के वर्तमान को देखते हैं, पिछले 10 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही गिरावट हो गई है। जो जीवन में सुना नहीं था ऐसे अनैतिक पतित काम संसार में हो रहे हैं। बहुत कम हम इस दुनिया के बारे में जानते हैं, पर जितना भी जानते हैं उसके आधार पर भी एक वैराग्य आता है कि अब इस दुनिया को चलाने में कोई फायदा नहीं। इतना गिर चुका है इंसान अपनी नैतिकता से। बाबा तो ऊपर से पूरी दुनिया को देख रहा है, जान रहा है ना? हम कितना जानते हैं? मैं समझती हूँ हम 1% भी इस दुनिया के बारे में नहीं जानते। बाबा तो सभी बंधनों से पर है, ऊपर है। वो तो सारे संसार को देख रहा है, कहाँ क्या क्या हो रहा है। इसलिए उनके महावाक्यों में हम सुनते हैं कितना रहम बाबा को आता है, कि तुम भक्तों की पुकार तुमको सुनने में आती है या नहीं। जो दुखी आत्माएं संसार में, जो भी शोषित है, पीड़ित है, उन आत्माओं के दुख के आवाज तुमको पहुंच रहे हैं या नहीं, बाबा हम बच्चों को कहते हैं। हमें बाबा के खाते, दुनिया के खातिर भी अपने आप को हमें संपूर्ण बनाना चाहिए। वैसे तो व्यक्तिगत बाबा ने हम सबको लक्ष्य दिया है, बाबा हमें आगे बढ़ाने के लिए अव्यक्त हुए। सूक्ष्म वतन वासी हुए, बाबा वतन में इंतजार कर रहे, और हम यहां क्या कर रहे हैं? हमें याद रहता है कि बाबा इंतजार कर रहे हैं? हम आत्माओं का संपूर्ण बनना कितना जरूरी है ये हमें महसूस कर। भल हमारा ब्राह्मण जीवन अच्छा ही जीवन है, हम पवित्र हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, बाबा के सहयोगी हैं, मददगार हैं, सेवादारी हैं, दुनिया की तुलना में हम बहुत अच्छे हैं, महान हैं, पर हमें पुरुषार्थी स्थिति में ही चलना है या हमें संपूर्ण बनना है? ये हमें साइलेंस में बैठकर सोचना है, खुद के साथ फैसला करना है। हर सीजन में बाबा कहते हैं, जो पुराने हैं, पिछले 10-15 साल वाले भी हैं, बाबा ने ज्ञान संपूर्ण रूप से हमें दे दिया। कहते हैं ना कि बाबा जो समझाना था वो मैंने समझा दिए। गीता में आता है अंतिम अध्याय में अर्जुन को बहुत समझाया, फिर प्रश्न करता रहता है। इतना पूरा ज्ञान सुनाने के बाद यादगार शास्त्र में भी लिखा है, सत्य तो यही है ना कि हम अर्जुन हैं और बाबा रोज समझा रहे हैं, पर यादगार शास्त्र में भी लिखा है लास्ट अध्याय में कि तुमको जो समझाना था वो मैंने समझा दिया है, अब यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुमको जो चाहिए सो करो। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। ये प्रैक्टिकल हम अनुभव कर रहे हैं ना कि बाबा को जो कहना था हम बच्चों को कह दिया। तैतीस वर्ष साकार में ज्ञान दिया बाबा ने, 47 वर्ष अव्यक्त रूप से ज्ञान दिया। दादी गुलजार के द्वारा अव्यक्त बाप दादा ने ज्ञान दिया। कितना समझाना होता है हाँ? सच में जो समझाना था बाबा ने समझा दिया। अब मुझे क्या करना है, ये मुझे निर्णय करना है। प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं कि भगवान अपनी लीला भी समेट रहे हैं, लग रहा है या नहीं? धीरे 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 कितना कम समय कर रहे। प्रैक्टिकली इन दादियों ने जीवन खर्च कर दिया हम सबको समझाने के पीछे। तो यहां साइलेंस में मौका है अपने आप से निर्णय करने का कि मुझे पुरुषार्थी ही चलते रहना है तीव्र पुरुषार्थी बनना है या फाइनली अपनी संपूर्ण स्थिति की ओर जाना है। अब हमारे निर्णय की जरूरत, बाबा का ज्ञान जब मिला, अपना अलौकिक जन्म याद कर, उस समय मित्र संबंधी सब साथ नहीं दे रहे, कोई विरोध भी कर रहे, पर हमने सभी बातों को हटाकर अपने आप को ब्राह्मण बना लिया, बना लिया। वैर विरोध विघ्न सब कुछ चला, पर हम मजबूत रहे, बाबा के पक्के बच्चे बन गए। अब ब्राह्मण से फरिश्ता बनने में अब कोई विरोध कर रहा है? कर रहा है? ब्राह्मण बनने में तो विरोध करते थे कि भाई तुम ये कौन सा नया ज्ञान ले आए हो। शूद्र से ब्राह्मण बनने में तो विरोध भी होता था। अब दुनिया ने समझ लिया कि ये छोड़ने वाले नहीं है, ये पक्के हैं। अब वही बेचारे बदल गए, सहयोगी बन गए कि ये नहीं हिलेंगे, अब इनके हम ही मददगार बन जाते। अब ब्राह्मण से फरिश्ता हम क्यों नहीं बन रहे हैं? अब कौन विरोध कर रहा है? कोई घर वाले मना कर रहे हैं कि मत बनो मत बनो, कोई नहीं कह रहा। अब हमारी खुद की दृढ़ता चाहिए। अब हमारा अपना सूक्ष्म पुरुषार्थ चाहिए। हमें मुश्किल न लगे इसलिए बाबा ने सहज कर दिया कि याद में रहे। विशेष रूप से अभ्यास करने लगे उसे योग बाबा ने कहा, पर जब हम लक्ष्य पूर्वक दृढ़ता से अभ्यास करते हैं तो उसे तपस्या कहा जाता है। तपस्या माना इंटेंस, एक इंटेंशन से, इरादे से, पक्के इरादे से अभ्यास करना, वो तपस्या। और वो इरादा, वो लक्ष्य यही कि मुझे बाबा जैसा बनना है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी बढ़कर हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं कि हर बच्चा बाप समान ये मौका है संगम युग फिर कोई बनाने वाला नहीं है हम फिर कोई पूछने वाला नहीं है कोई गाइड करने वाला नहीं है संगम युग में हर आत्मा को मौका है अधिकार है संपूर्ण बनने भक्ति की हालात तो देखते हो ना इस मंदिर में नहीं जा सकते ये पूजा आप नहीं कर सकते ये शास्त्र आप नहीं पढ़ सकते ये पंडितों की मोनोपली है ये ब्राह्मणों की मोनोपली यहां हर आत्मा को ये मौका है भगवान की तरफ से कोई भेदभाव नहीं अभी हम संपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं टोटल चेंज रूट से चेंज जड़ों से परिवर्तन टेम्पररी ऊपर ऊपर का नहीं ऊपर ऊपर से तो घास काट लेते हैं पर फिर बारिश आती है वातावरण मिलता है फिर उग जाती क्योंकि हमने टेम्पररी ऊपरी परिवर्तन किया ये रूट से चेंज संस्कार से बदलना ये अभी ही मौका है और सार रूप में तपस्या क्या करनी है सबाए है ना तपस्या के देखने नहीं विजिट करने नहीं वो तो कर लिया ना हर साल इस बार आप आए हैं तपस्या के लिए तपस्या क्या करनी हमारी पहली तपस्या है देह भान से न्यारे रहना अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहे ये मूल और मुख्य साधना है दुनिया में अल्प ज्ञान मिथ्या ज्ञान के कारण तपस्या को बहुत डिफिकल्ट बना दी बाबा ने मूल बात हमें सिखाई देहभान से न्यारा रहना है और अपने वास्तविक ओरिजिनल शुद्ध और सत्य आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है बार बार। आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से हम आत्मभिमानी नहीं बन जाते, हमें बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें देहभान से डिटैच रहना है। रावण की लंका में लंका की शोक वाटिका में राक्षसों के बीच सीता निरंतर किसके याद में थी, इसलिए उनके राज्य में उनकी अशोक वाटिका और उनकी सेना के बीच होते भी रावण उसको कुछ नहीं कर सका। ये कहानियां प्रैक्टिकल हम है, हम वो सीताएं हैं, देहभान की दीवार में हैं, दुनिया के बीच हैं, मुझे निरंतर अपने शुद्ध और सत्य स्वरूप में रहना है। ये अभ्यास ऑटोमेटिक हमें सभी बातों से साक्षी न्यारा बना। कोई मेहनत की बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, हम सबका सौभाग्य ये है हमें डायरेक्ट सत्य ज्ञान मिला। भक्ति में सारी मेहनत सारे व्रत तप उपवास इसलिए है सत्य क्या है ये पाना है। हमें पाने की मेहनत नहीं है, हमें ऑलरेडी मिल चुका है, हमें तो वो स्वरूप बनने का पुरुषार्थ। हमारी दूसरी तपस्या है एक बाप दूसरा न कोई, अब मेरे दिल दिमाग पर एक बाबा का ही अधिकार है। इस मन बुद्धि के प्रदेश में अब और कोई आ नहीं सकता है। वो बताया था ना कि इस लक्ष्मण रेखा में तुमको रहना। हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है कि सिवाय बाबा अब कोई बुद्धि में नहीं, न नजर किसी में डूबे, न बुद्धि किसी में डूबे। भल लौकिक अलौकिक सारे रोल प्ले करना है, हमें सबसे प्यार रूहानियत से मिलना है, पर मेरे मन और बुद्धि में अब और कोई आ नहीं सकता। ये मुझे ध्यान देना, ये तप है। ये तपस्या है, खुद खुद को समझाना है। हमारी सबसे बड़ी वफादारी बाबा से चाहिए। कोई और देहधारी में आकर्षित होना सबसे पहली बेवफा बाबा से हो जाती है, बाबा से हो जाती है। यहां हमारा डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? बाबा के साथ। ज्ञान से पहले और जन्मों में आत्माओं से बेवफाई हुई होगी, पर अब तो थोड़ा भी गफलत में रहे तो भगवान से बेवफाई हो जाए। ये लाइन क्लियर चाहिए, इसके बिगर तपस्या पावरफुल नहीं बन सकती। कितने भी घंटे बैठ लो, दिल से सेवा कर लो, पर जब तक ये बेस पक्का नहीं कि मेरा तो एक उसके बिगर आत्मा में शक्ति नहीं है। बाबा साकार मुरली में कहते हैं, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय बाप की याद के। यही रामबाण इलाज है। हमारी तीसरी तपस्या है कि शरीर से इस दुनिया में रहते हुए मुझे सदा मन बुद्धि से असली घर परमधाम में रहना। ये तपस्या, भले इन आंखों से दुनिया को देख रहे, पर मुझे मन की आंख से सदा घर में रहना, परमधाम में रहना। बाबा कहते हैं, जहां जाना है वहां से योग लगना चाहिए। ये बट नेचुरल है, आपको जिस दिन यहाँ से जाना है अगले दिन से क्या होगा? बुद्धि योग मधुबन से हिसार की तरफ जाएगा अपने आप। टाइम हो गया। जहां जाना है और जिसके साथ जाना है उसी से योग है ना। देखो जिसके साथ आपको जाना है आप फिर उसी से कांटेक्ट करने लगते हैं ना कि दीदी मेरे को किसके साथ जाना है, किसके साथ मेरे साथ डिब्बे में कौन होंगे, हम उनसे संपर्क बनाते हैं। किसके साथ जाना है? बाबा के साथ जाना। बाबा के साथ जाने का क्या मतलब है? बाबा की याद में जाना। अंत में बाबा की याद बुद्धि में हो माना हम बाबा के साथ जाएं। हमारी चौथी तपस्या है कि जब तक हम इस जीवन में हैं, इस शरीर में हैं, मुझे अपने आप को इतना नियम में संयम में रखना है कि मन बुद्धि या कर्मेंद्रिय से कोई भी पाप नहीं करना है। हम ये पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं? किए हुए पापों के हिसाब को चुप करने के लिए। अंडरस्टूड है कि मुझे नए पाप नहीं करने हैं। नया हिसाब नहीं बनाना। बाबा कहते हैं साकार मुरली में कि मनसा कितना भी तूफान आए कर्मेंद्रिय से पाप नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना बाबा ये संयम है, कंट्रोल है। कुछ भी हो इससे ब्राह्मण जीवन शुरू हुआ। अब समय अनुसार अब तो बाबा कहते हैं मनसा में भी तूफान न आए। अभी तो वो समय चल रहा है पर प्रैक्टिकल मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्य करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने। अज्ञान काल में हर कर्मेंद्रिय से गलत काम किए। वाणी से, हाथों से, आंखों से, आंखें भी तो निकाली है ना दूसरों को बड़ी बड़ी, आंखों से भी तो हमने गलत किया है, चेहरे से मुंह बिगाड़ते हैं ना कितनी बातों में, इशारा करते हैं, भवें से भी पाप करते हैं, गलत गलत इशारे करते हैं। आप देखो हर, क्योंकि खुद रॉन्ग होंगे तो हर कर्मेंद्रिय का उपयोग भी गलत किया था। अब हमारा लक्ष्य है हर कर्मेंद्रिय से सत्कर्म करने हैं। हम शुरू में आए, हमको यज्ञ का भोजन इतना नहीं पसंद आता। दादियां पहले प्यार से खिलाती थी, थोड़े लोग होते थे, दादियां भोजन करने बैठती, हम परोसेंगे तो दादियां गिट्टी खिलाती थी ना मुंह में। अब वो पसंद नहीं आता तो ना कहना होता है, पर चेहरा भी बिगड़ जाता था। तो मनोहर दादी सिखाती थी हमको कि नहीं खाना है ना, ना करो, चेहरा क्यों बिगाड़ा। दादी ऐसे सिखाती, स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए, दादियों की धारणा देख। और हमारे छोटी छोटी बात में चेहरा बिगड़ जाता है। कोई कर्मेंद्रिय से मुझे गलत काम नहीं करना, ये दृढ़ता रखनी, अटेंशन रखना, खुद को समझाना है। ऐसा करते करते ही तो विजयी होता है। और जब अटेंशन देंगे तो ध्यान में आएगा। देखो आप अपने पर अटेंशन देते हैं तो पता चलता है कि अभी ये बात मैंने ज्यादा बोली, वो जरूरी नहीं था बोलना, महसूस होता है ना, मुझे यहां दो शब्द से ही कहना था पर मैं भी उसमें आ गई, दो ज्यादा बोला, महसूस तो होता है ना अंदर। ये महसूस होगा तो परिवर्तन आएगा। और पांचवी बात, हम बाबा से जुड़े हैं, बाबा के द्वारा हम इस बेहद यज्ञ से जुड़े। भगवान अकेला नहीं है, बेहद परिवार के साथ मिला। हम बहुत बड़ी संस्था के सदस्य हैं। आज लोग आपको व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, संस्था के रूप में देखते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते हैं ना इससे आपको, ओम शांति वाले। अब हम व्यक्ति नहीं है, संस्था है। इसलिए हमारी प्रैक्टिकल पांचवी तपस्या है कि हमें यज्ञ के अनुशासन अनुसार चलना। कुछ भी हो, यज्ञ के आचार संहिता अनुसार चल। व्यक्तिगत हिसाब से नहीं चलना है कि ये मेरे साथ ठीक नहीं चलते हैं तो मैं भी उनको रिएक्ट करूं नहीं। हमें यज्ञ के अनुशासन आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कैसे ना, उस अनुसार चल। कुछ भी हूं हमारे आपसी स्वभाव संस्कार की बात हो, कुछ भी, पर मुझे सदा यज्ञ का नाम बाला हो उस अनुसार चल। आप कोई भी संस्था के सदस्य बनते हैं तो ये हर संस्था का नियम है कि भई अब आप लायंस क्लब के मेंबर हैं तो आपके लिए ये रूल्स हैं। हम इस यज्ञ के बने हैं। आज यज्ञ विद्यालय का नाम विश्व में बाला है। हम उनके मेंबर्स हैं। लोग बहुत ऊंची नजर से हमें देखते हैं। हमें उनके नियम मर्यादा दिनचर्या अनुसार चलना है। भल मुझे अपने आप को झुकाना पड़े, बदलना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, पर मुझे यज्ञ को नुकसान हो ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है। प्रैक्टिकल ये दृढ़ता रखना ये भी तपस्या। जब कर्म ठीक चलेंगे तो मन ठीक होगा। ऐसे योग नहीं लगता है। हर कर्म का प्रभाव मन बुद्धि पर पड़ता है ना। मुझे मन समेटना है तो मेरे कर्म भी स्व में स्थित करने वाले होने चाहिए। तो अपने आप को देखना, पांचों ही दृष्टि से, और उसमें मुझे स्वयं को कैसा शक्तिशाली बनाना है। तीन दिन का प्रोग्राम है ना? ऐसा मौका नहीं मिलता है। अपने अपने घर में कई बार हम चाहते हैं और कहते भी हैं कि सारा दिन कामकाज में ही जाता है। चाहते हैं शांति से बैठे, पर नौकरी धंधे घर गृहस्थी के कारोबार तो रहते ही है। ये मौका है अपने आप से मिलने का, बाबा से मिलने का। आपस में तो हम मिलते ही हैं। जब तक हम खुद से फैसला नहीं करेंगे ना, फाइनल डिसीजन हम नहीं लेंगे तब तक हमारी तपस्या शक्तिशाली नहीं बनेगी। बाबा कहते हैं, दादियां कहती हैं, हमारे बड़े हमें कहते हैं, हम भी चाहते हैं, पर हमें साइलेंस में बैठ के गौर करना होगा। अब तपस्या ही जरूरी, ज्ञान बाबा ने दे दिया, धारणाएं पक्की हो गई ना, इसमें कोई मेहनत नहीं है। हर धारणा कल्याणकारी है। बाबा ने पहले से तैयार कर दिया, अब समय कितना खराब है। हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि बाबा ने पहले से ही पवित्र बनाया, शुद्धन का नियम दिया, कितना फायदा है। सेवा हम दिल से करते हैं, बाबा के बच्चे सेवा दिल से करते हैं, ऐसे सेवाधारी कार्यकर्ता और कोई संस्था में नहीं है। गवर्नमेंट के लोग आते हैं, वो भी कहते हैं आप ही ये प्रोजेक्ट करो, हम सब फैसिलिटी देंगे पर आपके पास अच्छे हैंड्स, ऐसे बोलते। गुरु मां मंडलेश्वर आते हैं, वो कहते हैं दादी 8-10 हैंड हमें भी दो, हमारा आश्रम अच्छी रीति चला। आपके यहाँ इतने अच्छे भाई बहन है ना, थोड़े 8-10 हमें दो, हमारा आश्रम भी अच्छी रीति चला। सेवा दिल से कर। अब एक ही सब्जेक्ट पक्का करना है, वो है तपस्या। योग तो लग गया है बाबा से, एकाग्र होना है, लगन लग गई है बाबा से, मगन होना है, लव बाबा से हो गया है, अब सिर्फ लवलीन होना है। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय गीता दीदी जी ने हमें पहले ही दिन स्वागत सत्र के अंदर इस 3 दिन का लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट, बहुत ही सरल शब्दों के अंदर लेकिन बहुत गहन बातें, 5 प्रकार की तपस्या बताई। तो 3 दिन हम वही 5 प्रकार की तपस्या के अंदर दृढ़ता के साथ और पूर्ण लक्ष्य के साथ करना, दीदी ने बताया अभ्यास करना, वो ही एक प्रकार की हमारी तपस्या है। तो हम सभी हमारी आदरणीय गीता दीदी को फिर से बहुत दिल से एक हाथ से थैंक्स देते हैं।
तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता तपस्या से, जीवन में आती है मधुरता तपस्या ही, जीवन की है सच्ची सुंदरता।